जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ हमें एक अजीब सी सटीकता की उम्मीद होती है।
बिल्कुल, एक मशीन की तरह।
हाँ बिल्कुल, हर चीज एकदम स्पष्ट चाहिए होती है हमें। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही दिक्कत और ये रहा इसका इलाज। हम इंसानों को ना यही स्पष्टता पसंद है, चीजों को साफ साफ देखना,
उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना।
सही कहा, और कारण तथा प्रभाव को समझना, ये सब बहुत आसान लगता है।
ये हमारी मानवीय प्रकृति का एक बहुत गहरा हिस्सा है। मतलब हमें बाइनरी चीजें पसंद है, सही या गलत, काला या सफेद। कारण स्पष्ट होना तो इंसान को एक तरह की मानसिक तसल्ली मिलती है कि दुनिया एक तयशुदा नियम के अनुसार चल रही है।
हाँ, एक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र और खासकर मानवीय पीड़ा की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर चुकी है।
बिल्कुल, वहाँ कोई सीधी रेखा नहीं होती।
हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जहाँ कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती है, बल्कि सब कुछ एक अस्पष्टता के कोहरे में लिपटा होता है। और आज के हमारे स्रोतों के गहन अध्ययन का मिशन इसी कोहरे को चीर कर सत्य तक पहुंचना है,
और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है
सच में। तो आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन द्वारा तैयार किए गए द बुक ऑफ जॉब सेशन 27 के अध्ययन सामग्री में गोता लगाने वाले हैं। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य जॉब की पुस्तक की थियोलॉजी या धर्मशास्त्र को समझना है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन ने इसके लिए एक बहुत ही अलग और अनोखा रास्ता चुना है।
और वो रास्ता है नकारात्मक सत्य के माध्यम से सीखना। डॉक्टर वॉल्टन का यह दृष्टिकोण बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि मतलब कई बार किसी जटिल विषय को समझने के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं मानना है।
क्या नहीं मानना है, हाँ ये बहुत अहम है।
बिल्कुल, जब हम ईश्वर के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारी अपनी मानवीय उम्मीदें आड़े आ जाती हैं। जॉब की पुस्तक में भी यही हुआ। हम सत्य तक पहुँचने के लिए जॉब के उन विचारों का विश्लेषण करेंगे जो ईश्वर के बारे में पूरी तरह से गलत थे।
मतलब हम उसकी गलतियों से सीखेंगे।
हाँ, जॉब की गलतियों की पड़ताल करके हम दरअसल अपनी खुद की गलत फहमियों का आईना देखेंगे।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर वॉल्टन के अध्ययन में जॉब की पहली बड़ी गलत फहमी ये बताई गई है कि उसने ईश्वर को बहुत ही संकीर्ण या छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला मान लिया था।
हाँ, पेटी जिसे हम कहते हैं।
बिल्कुल, अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो क्या जॉब ये सोच रहा था कि ईश्वर उस सख्त स्कूल टीचर की तरह है जो किसी छात्र के लंबे चौड़े निबंध में महज एक कॉमा छूट जाने पर निर्दयता से उसके नंबर काट लेता है?
ये उपमा जॉब की उस समय की मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। अगर हम स्रोतों को गहराई से देखें तो जॉब की पुस्तक के अध्याय 7 और 14 में ये स्पष्ट रूप से नजर आता है।
अच्छा, वहाँ क्या कहा गया है?
जॉब को सच में ये लगने लगा था कि ईश्वर उसके हर एक कर्म, हर एक विचार पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ब्रह्मांडीय माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है।
माइक्रोस्कोप के नीचे?
हाँ, जहाँ ईश्वर उसका हर कदम, हर छोटी बड़ी गलती का हिसाब रखने के लिए उत्सुक बैठे हैं।
लेकिन यहाँ हमें एक पल रुककर जॉब की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जॉब ये सब बातें किसी आरामदायक कमरे में बैठकर दार्शनिक रूप से नहीं सोच रहा था।
बिल्कुल नहीं, वो तो भयंकर पीड़ा में था।
हाँ, उसने एक ही दिन में अपनी सारी संपत्ति खो दी थी, उसके बच्चे मारे गए थे और वो खुद एक भयानक बीमारी से जूझ रहा था, राख में बैठकर अपने घावों को खुरच रहा था। उस चरम पीड़ा में इंसान का दिमाग अक्सर कोई ना कोई कारण ढूंढने की कोशिश करता है।
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब इंसान के पास अपनी पीड़ा का कोई तार्किक कारण नहीं होता ना, तो वो अक्सर हर छोटी घटना को अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़ने लगता है।
हाँ, वो कड़ियां मिलाने लगता है।
बिल्कुल, जॉब भी यही कर रहा था। वो सोचने लगा कि शायद वर्षों पहले अनजाने में की गई कोई छोटी सी चूक आज इस महाविनाश का कारण बन गई है। ये एक बहुत ही दमघोटू एहसास है।
बहुत ज्यादा।
ये सोचना कि ब्रह्मांड का रचयिता आपकी गलतियां पकड़ने के लिए घात लगाए बैठा है।
और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सोच आज भी समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है। जब कोई इंसान अचानक किसी गंभीर बीमारी या हादसे का शिकार होता है तो सबसे पहली बात मन में यही आती है कि मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की।
हाँ, लोग तुरंत खुद पर शक करने लगते हैं।
बिल्कुल, लोग अक्सर ये मानने लगते हैं कि शायद ईश्वर पुरानी बातों का कोई बहीखाता लेकर बैठे हैं और उन्हें भूलने को तैयार नहीं है। एक तरह का कर्मों का खाता जहाँ एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है।
लेकिन डॉक्टर वॉल्स्टन का अध्ययन इसी विचार का पूरी तरह से खंडन करता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे मुनीम नहीं है जो हमारी गलतियों का हिसाब रखते हैं।
तो फिर वो क्या है?
इस संदर्भ में डॉक्टर वॉल्स्टन मैथ्यू 5:48 का उदाहरण देते हैं, जहां बताया गया है कि ईश्वर पूर्ण है, मतलब परफेक्ट है। अब हम इंसान पूर्णता का अर्थ ये निकाल लेते हैं कि एक पूर्ण ईश्वर हर छोटी भूल पर निर्दयता से सजा देगा।
हाँ, क्योंकि हमारे लिए परफेक्शन का मतलब कोई गलती बर्दाश्त ना करना है।
बिल्कुल, लेकिन धर्मशास्त्र इसके विपरीत बात कहता है। भजन संहिता 103 हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर हमारी कमजोरियों को जानते हैं, उन्हें पता है कि हम इंसान धूल से बने हैं, हम नाजुक हैं और हम गलतियां करेंगे।
यानी ईश्वर का स्वरूप उस सख्त टीचर वाला नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता या रचिता का है जो अपनी रचना की सीमाओं को गहराई से समझता है।
एकदम सही।
लेकिन अगर ईश्वर हमारी हर छोटी गलती का हिसाब रखकर सजा नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक बहुत गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है। अगर जॉब की पीड़ा उसकी किसी गलती की सजा नहीं थी, तो ये सब क्यों हो रहा था?
यही तो सबसे बड़ा सवाल था उसके लिए।
हाँ, और जब कारण समझ नहीं आता और इंसान ये मान लेता है कि उसे बिना किसी गलती के सजा मिल रही है, तो वो अक्सर पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देता है। और शायद यही बात जॉब को उसकी दूसरी बड़ी गलतफहमी की ओर ले गई।
ये मानना कि ईश्वर अन्यायपूर्ण है,
यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है।
हाँ, और मैं आपको बता दूं, ये मानसिक बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। अगर हम शुरुआत में देखें, जैसे जॉब 1:21 और 2:10 में, तो जॉब का रवैया पूरी तरह से समर्पण का था।
उसने कहा था ना कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया।
बिल्कुल, उसने सब कुछ बहुत ही शांति से स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शारीरिक और मानसिक पीड़ा असहनीय होती गई और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसका रवैया विद्रोही हो गया।
ये बदलाव सच में बहुत चौंकाने वाला है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आम नागरिक, जिसे यकीन है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया हो, और हताशा में आकर वो सीधा ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर खुद न्यायाधीश यानी ब्रह्मांड के रचयिता पर ही मुकदमा दायर कर दे।
इस स्थिति को समझने के लिए डॉक्टर वॉल्टन जॉब के दावों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। जॉब 9:19 में वो हताशा में कहता है कि न्याय के मामले में उन्हें कौन चुनौती दे सकता है।
मतलब वो मान रहा है कि ईश्वर शक्तिशाली है।
हाँ, वो ये स्वीकार कर रहा है कि ईश्वर के पास परम शक्ति है। लेकिन महज 3 आयतों के बाद जॉब 9:22 तक पहुँचते पहुँचते उसका धैर्य जवाब दे जाता है, और वो सीधे तौर पर आरोप लगाता है कि ईश्वर निर्दोष और दुष्ट दोनों को एक समान नष्ट कर देते हैं।
अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है। एक श्रद्धालु इंसान सीधे तौर पर ईश्वर की कार्यप्रणाली को अन्यायपूर्ण बता रहा है।
हाँ, और इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इब्रानी शब्द है, मिशपद।
मिशपद? इसका क्या अर्थ होता है?
प्राचीन संस्कृतियों में मिशपद का अर्थ सिर्फ आधुनिक अदालती न्याय नहीं था, बल्कि इसका अर्थ था सही व्यवस्था, निष्पक्षता और शासक का धर्म। जोब 19:7 और 27:2 में सीधे तौर पर दावा करता है कि ईश्वर ने उससे उसका मिशपत छीन लिया है।
मतलब उसकी व्यवस्था छीन ली है।
बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। अध्याय 16:9-14 में जोब की भाषा और भी आक्रामक हो जाती है। वो ईश्वर को एक हमलावर, एक विरोधी, एक विश्वासघाती और एक क्रूर योद्धा तक कह डालता है, जो बिना किसी कारण के उसे तीरों से बींद रहा है।
अगर हम इंसान के नजरिए से सोचें, तो जॉब का क्रोध स्वाभाविक लगता है। मतलब हम सभी के भीतर न्याय की एक गहरी भूख होती है। हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा है, तो उसके साथ आज, कल और हमेशा सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए।
हाँ, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं।
बिल्कुल, और अगर किसी बुरे इंसान ने कुछ गलत किया है, तो उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हर दिन का हिसाब उसी दिन बराबर हो जाए।
यही हमारी आधुनिक सोच की सबसे बड़ी खामी है, जिसे डॉक्टर वॉल्टन उजागर करते हैं। हम इंसानों की ये सोचने की गहरी प्रवृत्ति होती है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और न्याय के स्रोत हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर एक पल में वो न्याय स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
एकदम साफ साफ।
हाँ, हम ये मान लेते हैं कि ये ब्रह्मांड ईश्वर के गुणों की मुहर लगा हुआ एक ऐसा स्थान है, जहाँ हर घटना सीधे तौर पर उनके न्याय का प्रतिबिंब है।
अब लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है? क्योंकि अगर मैं ब्रह्मांड के रचयिता के नजरिए से सोचूं, तो शायद उनका ध्यान एक एक इंसान के रोजमर्रा के हिसाब किताब पर ना होकर पूरे ब्रह्मांड के एक विशाल संतुलन पर होगा।
आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी। डॉक्टर वॉल्टन इसे ईश्वर की बुद्धिमत्ता या विजडम कहते हैं। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की योजना रोजमर्रा का त्वरित न्याय सुनिश्चित करना नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
उनकी योजना उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब है। ईश्वर व्यवस्था यानी ऑर्डर के स्रोत हैं। लेकिन, और ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है, इस दुनिया में केवल व्यवस्था नहीं है, यहाँ अव्यवस्था यानी नॉन ऑर्डर और डिसऑर्डर भी मौजूद है।
ये थोड़ा जटिल विचार है। अव्यवस्था के मौजूद होने का मतलब क्या ये नहीं है कि चीजें ईश्वर के नियंत्रण से बाहर जा रही है?
नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अव्यवस्था का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि ईश्वर अन्यायपूर्ण है या ब्रह्मांड उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। ये सब ईश्वर के एक ऐसे व्यापक डिजाइन का हिस्सा है जिसे मानवीय बुद्धि पूरी तरह से समझ नहीं सकती।
ये हमारी समझ से बहुत ऊपर है।
बिल्कुल। अंततः अध्याय 40:8 में ईश्वर खुद जॉब को जवाब देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जॉब ने अपनी सीमित समझ के आधार पर उन्हें अन्यायपूर्ण मानकर बहुत बड़ी भूल की है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी मानवीय न्याय के समझ को, जो कि एक बहुत ही सीमित और बाहरी मानक है, उसे ईश्वर पर थोपने की कोशिश करते हैं और उन्हें उस पैमाने पर आंकते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर को ईश्वर के दर्जे से नीचे गिरा रहे होते हैं।
हाँ, हम उन्हें अपने स्तर पर ले आते हैं।
बिल्कुल, हम उनसे कह रहे होते हैं कि आपको हमारे बनाए नियमों और हमारी टाइमलाइन के अनुसार काम करना चाहिए।
और जब इंसान देखता है कि ईश्वर उसके बनाए नियमों और उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो वो हताश होकर एक तीसरी और सबसे अजीब रणनीति अपनाता है। जब मुकदमा करने और न्याय मांगने का सीधा तरीका काम नहीं आया, तो जॉब ने ये नई रणनीति अपनाई, जो कि उसकी तीसरी बड़ी गलतफहमी थी।
और वो रणनीति है ईश्वर के साथ हेरफेर या चालाकी करने की कोशिश।
इस बिंदु पर आकर सच में दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है। ये विचार ही अपने आप में हास्यास्पद है।
हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है।
मतलब, क्या कोई नश्वर इंसान जो धूल से बना है, जिसका जीवन एक पल का है, वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के साथ हेरफेर करने की सोच भी कैसे सकता है? ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर को बच्चों की किसी साधारण सी पहेली में उलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या जॉब वाकई में ये सोचता था कि वो अपनी बातों से ईश्वर को चकमा दे सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन प्राचीन काल से लेकर आज तक इंसानी फितरत ऐसी ही रही है। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि जब जॉब ईश्वर को अदालत में खींचने और उनसे जवाब मांगने में विफल रहा, तो उसने अध्याय 31 में अपनी निर्दोषता की शपथ का इस्तेमाल किया।
निर्दोषता की शपथ, ये कैसे काम करती थी?
ये सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास नहीं था, बल्कि ईश्वर को कानूनी रूप से फंसाने की एक सोची समझी चाल थी।
अरे, उसने ऐसा क्या कहा जो ईश्वर को फंसाने के लिए था?
मैं समझाती हूँ। जॉब ने ईश्वर की खामोशी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि उन सभी अपराधों और पापों की एक लंबी सूची गिनाई जो उसने अपने जीवन में नहीं किए थे, और फिर उसने ईश्वर को एक सीधी चुनौती दी कि अगर वो इनमें से किसी भी अपराध का दोषी है, तो ईश्वर उसे वहीं मार डाले।
ओह, ये तो एक बहुत ही चतुर और खतरनाक कानूनी फंदा था। उसने जानबूझकर एक करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर दी।
यही इस रणनीति का मूल था। जॉब का विचार यह था कि यदि ईश्वर उसकी इस चुनौती के बाद चुप रहते हैं और उसे सजा नहीं देते हैं, तो जॉब स्वतः ही दोष मुक्त साबित हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ईश्वर ने मान लिया है कि जॉब निर्दोष है।
और अगर ईश्वर उसे मार डालते हैं, फिर क्या?
अगर ईश्वर जॉब को बिना किसी वास्तविक अपराध के नष्ट कर देते हैं, जो कि अनुचित साबित होगा, तो ईश्वर की अपनी ही नीतियां असंगत साबित हो जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि जॉब की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो बच जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में ईश्वर की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
वाह, ये तो गजब का दिमाग लगाया उसने।
हाँ, संक्षेप में कहें तो वो ईश्वर को मजबूर कर रहा था कि या तो वे उसे बेगुनाह माने या फिर पूरे ब्रह्मांड के सामने खुद को एक अन्यायी शासक साबित करें।
ये तो ब्रह्मांडीय स्तर की ब्लैकमेलिंग है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी योजना के केंद्र में ये विचार छिपा है कि ईश्वर को मजबूर किया जा सकता है, उन्हें किसी तरह से कोनों में धकेला जा सकता है।
और जॉब का यह व्यवहार सिर्फ अध्याय 31 तक सीमित नहीं था। डॉक्टर वॉल्टन स्रोत सामग्री की शुरुआत यानी जॉब 1:4 और 5 की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। वहां हम देखते हैं कि जॉब अपने बच्चों के संभावित पापों के लिए लगातार अनुष्ठान और बलियां चढ़ाता है।
अच्छा, एडवांस में ही सब ठीक करने की कोशिश।
बिल्कुल। जॉब का यह व्यवहार दर्शाता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी थी कि अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर को प्रबंधित किया जा सकता है या उन्हें मात दी जा सकती है।
अगर मैं इस विचार को आज के परिदृश्य में रखूं तो ये बहुत ही प्रासंगिक लगता है। हम शायद खुद को बहुत आधुनिक मानते हों, लेकिन क्या आज भी लोग ईश्वर के साथ यही सब नहीं करते?
हाँ, हम रोज यही करते हैं।
हम ईश्वर को एक तरह की वेंडिंग मशीन मान लेते हैं। हम दान पुण्य करते हैं, नियमित रूप से प्रार्थना स्थलों में जाते हैं या धार्मिक अनुशासनों का बहुत कठोरता से पालन करते हैं, और ये सब करते हुए हमारे मन में ये भावना होती है कि मैंने मशीन में अपने अच्छे कर्मों का सिक्का डाल दिया है, अब बदले में मुझे सुख, सफलता या अच्छे स्वास्थ्य का उत्पाद मिलना ही चाहिए।
ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। डॉक्टर वॉल्टन इसे लाभन्मुख सोच कहते हैं। हम अपने अनुष्ठानों, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी तथाकथित अच्छाई का उपयोग ईश्वर पर एक अदृश्य दबाव डालने के लिए करते हैं। ये प्रेम या भक्ति नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक लेन देन का रिश्ता है,
एक तरह का ट्रांजैक्शन।
हाँ, ट्रांजैक्शन। हम सोचते हैं कि अगर हम सही तरीके से, सही समय पर, सही मंत्र या सही दान देंगे तो ईश्वर को हमारी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी।
और जब वेंडिंग मशीन से हमारी मनचाही चीज बाहर नहीं आती तो हम मशीन को लात मारने लगते हैं, यानी ईश्वर को अन्यायी कहने लगते हैं।
इसी वजह से डॉक्टर वॉल्टन बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हमें इस तरह की सोच को अपने भीतर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ईश्वर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे इंसान अपनी चतुराई या अपने अनुष्ठानों के जाल में फंसा सके। ईश्वर संप्रभु हैं और उनके काम करने के तरीके मानवीय लेन देन की संकीर्ण समझ से बहुत ऊपर है।
तो इस सबका अर्थ क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने आज तीन बहुत ही गहरे बिंदुओं पर विचार किया। हमने देखा कि जॉब की पीड़ा ने उसे ईश्वर के बारे में किन गलत धारणाओं तक पहुंचाया। उसने सोचा कि ईश्वर बहुत संकीर्ण है और छोटी छोटी बातों पर सजा देने के लिए तैयार बैठे हैं।
हाँ, पहली गलती।
बिल्कुल। और जब ये बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो उसने मान लिया कि ईश्वर अन्यायपूर्ण है और दुनिया में कोई सही व्यवस्था नहीं है, और अंततः हताशा में आकर उसने ईश्वर के साथ चालाकी करने और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की।
और इन तीनों गलतियों को समझने के बाद ही इस अध्ययन का असली निष्कर्ष सामने आता है। डॉक्टर वॉल्टन का मुख्य बिंदु ये है कि जॉब की पुस्तक से बेहतरीन धर्मशास्त्र तब निकलकर सामने आता है जब हम ईश्वर के बारे में जॉब की इन गलतियों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं।
हाँ, मतलब नकारात्मक सत्य।
बिल्कुल, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है, तब जाकर हमारे दिमाग के वो जाले साफ होते हैं जो हमें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकते हैं।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये अध्ययन हमें खुद अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जॉब की ये गलतियां सिर्फ किसी प्राचीन पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं है। हम सभी में कभी न कभी किसी न किसी रूप में ईश्वर को एक मुनीम, एक अन्यायी न्यायाधीश या एक वेंडिंग मशीन समझने की प्रवृत्ति होती है।
अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यही कारण है कि ये पूरी चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर संकीर्ण नहीं है, वे अन्यायी नहीं है और उन्हें मानवीय अनुष्ठानों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तब जाकर हम उस असली सवाल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं
कि दुनिया में दुख क्यों है।
हाँ, ईश्वर की इस सही समझ के स्थापित होने के बाद ही जॉब की पुस्तक अपने अगले और सबसे बड़े विषय की ओर बढ़ती है, जिसे डॉक्टर वॉल्टन दुख का धर्मशास्त्र कहते हैं।
ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन गहरे सवालों तक पहुँचने के लिए पहले इस अस्पष्टता के कोहरे को हटाना कितना जरूरी था। हालांकि जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उस दुख के धर्मशास्त्र पर विस्तृत चर्चा डॉक्टर वॉल्टन के अगले सत्र का विषय है, जिससे हम भविष्य के किसी अध्ययन के लिए सुरक्षित रखेंगे।
हाँ, वो एक अलग ही गहराई वाला विषय है।
बिल्कुल। लेकिन आज हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी जहां हर चीज बहुत साफ, स्पष्ट और बाइनरी होती है।
हमने ये समझा कि कैसे हम इंसान उस एक्सरे जैसी स्पष्टता को ब्रह्मांड के रचयिता पर भी थोपना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे।
हाँ, हम चाहते हैं कि ईश्वर का न्याय, उनकी सजा और उनका इनाम हमारी बनाई हुई छोटी छोटी फाइलों में बिल्कुल फिट बैठ जाए,
क्योंकि वो स्पष्टता हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराती है। हमें लगता है कि अगर हम ईश्वर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे तो हम अपने जीवन को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे,
और यही नियंत्रण की चाहत हमें ईश्वर से दूर एक लेन देन वाले रिश्ते में धकेल देती है। तो आज के स्रोतों के गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला दार्शनिक सवाल सामने आता है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।
वो क्या है? अगर ईश्वर से इंसान की सारी अपेक्षाएं पूरी तरह से मानवीय न्याय, हिसाब किताब और कर्मों के लेन देन के मानकों पर ही आधारित हैं, तो क्या इंसान वास्तव में उस असीम सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा कर रहा है?
बहुत गहरा सवाल है।
हाँ, या फिर वो महज अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही न्याय की समझ और अपनी ही नियंत्रण की चाहत के एक बहुत बड़े रूप की पूजा कर रहा है? क्या मानवता उस ईश्वर को स्वीकार करने का साहस रखती है जो हमारी समझ से परे है? या हम सिर्फ उस एक्सरे मशीन जैसी स्पष्टता और वेंडिंग मशीन वाले धर्म के मोह में फंसे रहना चाहते हैं?
ये एक ऐसा विचार है जो धर्मशास्त्र के पन्नों से निकलकर सीधे मानवीय अस्तित्व की गहराई में उतरता है।